نعيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق سورة الحج آيات 29-32 ابھی حج کو یا عید کو جو حج کے ساتھ آتی ہے گزرے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں اور حج ہی کا مہینہ چل رہا ہے آج کے خطبے کے لیے میں نے انہی آیات سے مضمون کو ترتیب دیا ہے جو حج سے تعلق رکھتی ہیں میرے ذہن میں ایم ٹی اے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا مضمون تھا اور ایک خاص پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا جب اس تعلق میں قرآن آیات پر نظر ڈالی تو یہی وہ آیات تھیں جو اس مضمون سے گہرا تعلق رکھتی ہیں اور کئی طرح سے تعلق رکھتی ہیں ایک ہی نہیں بلکہ مختلف جہتوں سے یہ اس مضمون سے بہت ہی گہرا رابطہ رکھتی ہیں بس ان آیات کی تلاوت کی غرض دراصل ایم ٹی اے کے تعلق میں پیدا ہونے والے بعض خطرات کی نشاندہی کرنا تھی اور ان آیات میں اس مضمون کو اس طرح مربوط طور پر بیان فرمایا گیا کہ اور بھی بہت سے پہلو جو ذہن میں نہیں تھے وہ ان آیات کی تلاوت کے بعد سامنے ابھر آئے ان کا ترجمہ یہ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ تاکہ وہ اپنے منافع کو پہچانیں لِيَشْهَدُوا کا لفظی ترجمہ تو ہے دیکھیں مگر اس طرح دیکھنا کہ گواہ بن جائیں اس میں مضمون کو پہچاننے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے خوب اچھی طرح اس سے واقف ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان منافع کو دیکھ کر ان سے استفادہ کریں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ فِي مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور اللہ کا نام لیں اللہ کا نام پڑھیں ان چند دنوں میں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو मवेशियों में से मुख्तलिफ चौपाए अता फरमाए हैं। फकुलू मिन्हा वातिमुल बायस अल फकीर, बस उसमें से खाओ और तकलीफ में मुब्तला और फकीर को, दोनों को जो तकलीफ में मुब्तला हों या नादारी का शिकार बनकर फकीर की हद तक पहुंच गए हों, उनको इसमें से हिस्सा दो। थुम अल यकदू तफ्तहुम, फिर वो फिर ताकि ये हो कि वो अपनी मैलों को दूर करें, जो मैल उनके बदन के साथ चिमटी हुई हैं और उनकी रूह के साथ वाबस्ता हो चुकी हैं। वलयूफू नुजूरहुम, और अपनी मानी हुई मन्नतों को या नजरों को पूरा करें। वलयतवफू बिलबैतिल अतीक, और इस कदीम तरीन घर का तवाफ करें। तालिक, ये इसी तरह है जो बात बयान की गई है। वमन युअज़्ज़िम हुरमातिल्लाह, और जो अल्लाह ताला के मुहर्रमात यानी काबले इज्जत काबले ताज़ीम निशानात की इज्जत करता है, उनको अजमत की निगाह से देखता है। हुरमात में हराम का मजमून मनफी मानों में भी पाया जाता है एक, लेकिन यहाँ हुरमात में इज्जत और एहतराम का मजमून है, और उसका भी हराम के आम उर्फ आम वाले मजमून से गहरा ताल्लुक है। हराम चीज को इंसान हाथ न लगाए, ये उसकी हुरमत के मजमून में दाखिल है, और इज्जत के मकाम पर भी हाथ न डाले और खुदा का तकवा अख्तियार करे। बाल मकामात ऐसे होते हैं कि उन पर जुबान खोलना, उन पर तख़फ़ीफ़ के साथ उनसे उनका जिक्र करना या बदतमीजी करना खुदा के हुज़ूर बहुत बड़ा गुना बन जाता है। तो इन मामलों में हुरमात का मज़मून है कि वो खुदा ताला के शायर जिनके साथ अल्लाह ताला ने हुरमतें वाबस्ता फरमा दी हैं, वो खा जिंदा वजूद हों खा निशानात हों, जिनको जिंदा वजूदों ने इज्जत बख्शी और अजमत अदा की, दोनों सूरतों में उनका एहतराम लाजिम है। वह हिल्लत लकुमुल अनामो, और तुम्हारे लिए अनाम हलाल कर दिए गए हैं। अब इसका मजमून का हुरमत का जो दूसरा पहलू था, उसने ये एक ताल्लुक कायम कर दिया, और कुरान करीम की फसाहत और बलागत की ये शान है कि दो मुख्तलिफ मजामीन को इस तरह ऐसे लफ्जों से बांध देता है जिन लफ्जों में दोनों मजामीन के साथ एक तबी ताल्लुक होता है। बस हुरमत का मजमून जहां इज्जत और एहतराम का है, वहां शायर से मुराद और साहिब हुरमत जगहों से मुराद बैतुल्लाह और खाना काबा है, और जहां हराम चीजों से इसका ताल्लुक है, वहां ये फरमाया उहिल्लत लकुमुल अनामु इल्ला मा युतला अलैकुम, उन चीजों के सिवा जो तुम पर पढ़ दी गई हैं, जिनके मुतल्लिक तुम्हें तालीम दी जाती है, उनके सिवा बाकी तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। बस खाने पीने की और इस्तेमाल की चीज़ों में भी बाज़ हराम चीज़ें हैं, उनसे भी बचना है, मगर इन दोनों मजामीन में लफ्ज़ हुरमत वाहिद होने के बावजूद इन दोनों मजामीन में बोदुल मशरिकैन है। यानी एक जगह हुरमत से मुराद इज्जत की वजह से उसका जिक्र एहतराम से करना है, बात करते हुए खौफ खाना है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब सहाबा हाजिर होते थे तो उन सहाबा का जिक्र मोहब्बत और प्यार से मिलता है जो अदब से अपनी आवाज़ को धीमा कर लेते थे, और जो बुलंद आवाज़ से पुकारते थे और हुजरात से परे आवाज़ें देते थे, उनका कुरान करीम ने नाराज़गी के साथ जिक्र फरमाया है। और खाना काबा के गिर्द घूमना, वहाँ उस तकद्दस को पेश नज़र रखते हुए जिक्र इलाही करना, ये उसकी इज्जत का तकाजा है, और किसी किस्म के गंदगी को साथ ना ले जाना और पाको साफ रहना, और अपनी रूह को भी हर किस्म के गंदे ख्यालात से पाक रखना, ये भी उसकी हुरमत का तकाजा है। और उस हुरमत के तकाजे को गंदगी दूर करने से जिस तरह पूरा किया जाता है, उसी तरह उन गंदी चीजों से दूर रहना भी लाजिम है जो गंदगी का कोई भी मज़मून रखती हो। बस अल्लाह ताला ने हराम के दो इंतहाई माने यहां इकट्ठे कर दिए और एक मज़मून से दूसरे मज़मून के लिए लफ्ज़ हुरमत को वह पुल के तौर पर इस्तेमाल फरमाया। एक खाना काबा की हुरमत है और शायरुल्लाह की हुरमत है, उनके तकद्दुस की वजह से है और उनसे एहतियात का मामला है। एक खबीस और गंदी चीजों की हुरमत है, उनसे बचना उस हुरमत का तकाजा है और उनसे दूर रहना उस हुरमत का तकाजा है। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, यहां तुम रूह की वालिदगियों और गंदगियों से पाक साफ होकर पहुंचे हो और तुम्हें एक रूहानी रिज्क मिल रहा है। तुम्हें जिस्मानी रिज्क भी इसी हवाले से अता किया जा रहा है और जिस्मानी रिज्क जो अता किया जा रहा है उसमें पाकीजगी पेश नजर रखी गई है। तुम्हारे लिए सिर्फ वो चीजें हलाल की गई हैं जो पाकीजा हैं, जो गंदगी का पहलू रखती हैं उनको तुम्हारे लिए हराम फरमा दिया गया। और गंद के मज़मून को जो जिस्मानी गंदगी से ताल्लुक रखता है रूहानी गंदगी के मज़मून की तरफ मुंतकिल फरमाते हुए फरमाता है फजतनिबुर रिज्स मिनल औथान है। ये जो हराम जानवर हैं ये एक इतला मिल रही है, वीडियो सिग्नल पिक्चर बाहर नहीं जा रही, सिर्फ आवाज आ रही है, ये क्या वजह है? आपके कैमरों में खराबी है कुछ है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं दोबारा खुतबे को वहीं से शुरू करता हूं जब बात थोड़ी टूट गई थी। जो हमारे सामेईन और नाज़रीन हैं दुनिया भर में, उनको आवाज तो साफ जा रही है और तस्वीर नहीं देख सकते वक्ती तौर पर, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तस्वीर भी देख लेंगे और दोबारा इस खुतबे की वीडियो जब दिखाई जाएगी तो आवाज और तस्वीर के साथ वो इकट्ठा देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। अब मैं वहीं से मज़मून को शुरू करता हूँ जहाँ छोड़ा था। मैं ये बयान कर रहा हूँ कि कुरान करीम ने हज के मज़मून में हुरमत के लफ्ज़ को इस तरह एक दूसरे के एक मज़मून को एक मज़मून के एक पहलू से दूसरे पहलू तक बांधा है और उससे फिर दूसरे पहलू या तीसरा पहलू निकाल लिया है। एक ऐसा धागा है हुरमत के मज़मून का जो हर बदलते हुए मज़मून में मुश्तरक है और बज़ाहिर अलग अलग बातें हो रही हैं लेकिन बुनियादी तौर पर यही बात है जो आगे जारी और सारी है। इस ताल्लुक में मैंने बयान किया कि अल्लाह की तरफ से जिन चीज़ों को मुहर्रम कर दिया गया हो उनकी इज्जत लाजिम है और अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को मुहर्रम फरमा दिया और बैतुल्लाह से ताल्लुक वाली बहुत सी और बातें हैं जो मुहर्रमात में शामिल हो गई। हुरमत का दूसरा माना है गंदी और नापाक चीज़ों से इज्तनाब। तो पहले मानों का तकाजा यह भी है कि इस मुहर्रम घर में कोई गंदी चीज दाखिल ना हो, कोई नापाक चीज ना हो और कुर्बानियां जिनका गोश्त तुम्हारे लिए हलाल फरमाया गया है अल्लाह ताला तसल्ली देता है कि वो पाक चीजें हैं, इसीलिए खाना काबा तक उनकी रसाई भी है। मगर उनकी पाकीजगी सिर्फ बदनी पाकीजगी नहीं बल्कि रूहानी मानों में भी उनको पाकीजगी नसीब होनी चाहिए। वो सिर्फ इस तरह हो सकती है कि उनको पेश करते हुए गैरुल्लाह का कोई तसव्वुर ना आए और खालिसतन लिल्लाह, ना कि असनाम के नाम पर उनको ज़िबह किया जाए। इससे जो रिज्क की इंतहाई बदतरीन सूरत है यानी शिर्क, वो नापाकी जिससे पाक करने के लिए खाना काबा बनाया गया, वो नापाकी तुमसे दूर हो जाएगी अगर तुम अपने खाने की चीज़ें भी पाक करोगे, अपने बदन को भी पाक करोगे और अपनी रूह को हर किस्म की गंदगी से पाक करोगे जिसकी इंतहा शिर्क है। اور شرک کہنے کے بعد فرمایا وہ قول الزور. اور یاد رکھو جھوٹ جو ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے, سب سے بڑی گندگی جھوٹ ہے جو شرک پر منتج ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ جھوٹ ہو اور انسان مشرک نہ بنے. شرک کے ہر پہلو کا جھوٹ سے تعلق ہے. بس یہ جو چھوٹی سی آیت ہے اس میں اتنے مضامین اس طرح پیک کر دیے گئے ہیں, اکٹھے کر دیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. ایک ایک مضمون پر اگر آپ گفتگو شروع کریں تو ایک ایک پورا خطبہ اس مضمون کی وضاحت پہ خرچ ہو سکتا ہے. مگر میرے پیش نظر یہ مضمون تھا کہ اس کا ایم ٹی اے کے نظام سے کیا تعلق ہے, اور یہ آیات میرے ذہن میں جو مضمون تھا اس مضمون کو واضح کرنے میں کس حد تک اور کن معنوں میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس مضمون کے تعلق میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کا قبلے سے بھی ایک تعلق ہے, توحید کا ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونے کا تعلق ہے. جب آپ کا قبلہ بدلتا ہے تو شرک ہوتا ہے, اور جب شرک ہوتا ہے تو نجس پیدا ہوتی ہے, یا دل گندا ہو تو شرک پیدا ہوگا ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہر قسم کا خبث, ہر قسم کی گندگی, ہر قسم کی غلاظت جو ہے وہ شرک پر لازماً منتج ہوگی, اور اوثان اٹھ کھڑے ہوں گے, خدا واحد کی بجائے بت سامنے آ جائیں گے اور بت پیدا ہو جائیں گے. اور یہ عجیب ایک توارد ہے کہ ایم ٹی اے نے اپنا قبلہ ان دونوں میں تبدیل کیا ہے, اور اس قبلے سے کلیتاً اعتراض کر لیا ہے جس قبلے پر گندے پروگرام آتے ہیں اور رسک ہے. چنانچہ جب ہم نے اس کو بدلا تو بعض دوستوں نے ہمیں لکھا کہ اسے پھر وہ لوگ نہیں سن سکیں گے, آپ نے بدل تو دیا ہے, جو مشہور اور ہر دل عزیز پروگرام سننے کے لیے اسی سمت میں اپنے ڈش اینٹینا کو سیٹ کیے بیٹھے تھے. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ تو گندگی کی خاطر اس سمت میں اینٹینا کو فٹ کیے بیٹھے ہیں, وہاں اگر شرک کی بجائے توحید کا مضمون چلا, اگر گندگی کی بجائے نفس کی پاکیزگی کا مضمون جاری ہوا تو ان کی بلا کو بھی دلچسپی نہیں ہوگی. ہاں وہ لوگ جو اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اچھی باتیں سنتے ہیں, اچھی باتیں دیکھتے ہیں, ان کو اور ان کی اولادوں کو ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ اسی زاویے, اسی سمت, اسی قبلے سے گندگی کو بھی دیکھیں, اور رفتہ رفتہ گندگی ان کو کھینچ کر دوسری سمت میں لے جا سکتی ہے. یہ وہ مضمون تھا جو میرے پیش نظر تھا, اور میں نے ہی ان آیات کے مضمون کے دائرے میں ہے یہ. بس ہم نے جو قبلہ بدلا ہے یہ صحیح قبلہ ہے, یہ اس رخ کا قبلہ ہے جہاں گندگی چلتی ہی نہیں, اور یہ وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے جہاں تمام اہم سنجیدہ پروگرام جاری ہوتے ہیں, کیونکہ یہ حکومتوں کے حکومتوں سے رابطے اور بین الاقوامی خبروں کے رابطوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور براہ راست عوام الناس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے انسٹیٹیوشن اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں, اور عوام الناس اس قسم کے اینٹینے لگاتے ہی نہیں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں, ان کو دلچسپی کوئی نہیں. بس ہم نے اپنا قبلہ وہاں اس طرف معین کر لیا ہے جہاں ایک ہی ٹیلی ویژن ہے جو لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچے گا اور پاک باتیں بیان کرے گا, اسلام کی سچی اور پاکیزہ تصویر کھینچے گا, توحید کے گیت گائے گا, اور اس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. بس یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت ہی اہم اور بابرکت تبدیلی ہے, اور اس تبدیلی نے ہمیں ایک اور بھی فائدہ پہنچا دیا. وہ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا قبلہ تبدیل ہو تو کچھ لوگ جو اعلیٰ مقصد سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ محض جسمانی طور پر یا رسمی طور پر کسی किसी मजमून तो नहीं कहना चाहिए, रस्मी तौर पर उस तरफ मुंह किए बैठे होते हैं और असल दिलचस्पी उनकी तौहीद में नहीं होती, असल दिलचस्पी उनकी खुदा ताला की जात में नहीं होती। जब क़िबला तब्दील हो तो फिर वो लोग पीछे रह जाया करते हैं, उस वक्त वो नंगे हो जाते हैं। ये मज़मून कुरान करीम ने खुद खोल कर बयान फरमाया है, अगरचे इस मौजूदा मज़मून के मुकाबले पर वो एक बहुत ही आला दर्जे का मज़मून है, लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के मज़ामीन के साए में ही आगे छोटे छोटे मज़मून पैदा होते हैं, उन्हीं की मुताबिकत में पैदा होते हैं। बस आज का जो ये मज़मून है तहवील क़िबला के साए के तले है, उसी के ताबे है। MTA ने जो अपना कद क़िबला बदला तो गंदगी से दूर हटी और आला मकासिद की तरफ मायल हुई और अपने प्रोग्रामों को गंदगी से और भी ज़्यादा दूर कर दिया जितने वो पहले दूर थे। यानी इहतमाल के तौर पर भी कोई गंदा प्रोग्राम इस चैनल पर सुनाई नहीं दे सकता, दिखाई नहीं दे सकता। कुरान करीम फरमाता है कि जब तहवील क़िबला की गई तो उसका एक मकसद ये था कि वो लोग जिनके नफ्स बीमार हैं वो अलग हो जाएं, वो नंगे हो जाएं, वो पहचाने जाएं, वो जो इखलास में कामिल हैं, जिनको अल्लाह की तौहीद से और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, उनके लिए क़िबले की तब्दीली ज़रा भी गया नहीं गुजरती, क्योंकि असल मकसद के साथ वाबस्ता रहते हैं और चिमटे रहते हैं। उनको तकलीफ़ होती है जिनके मकासद के हसूल में फ़र्क पड़ जाता है। बस ये वो मज़मून था जो मेरे ज़हन में आया, जिसके लिए मुझे कुरान करीम की आयात की तलाश थी। तो हज की जो आयात हैं वो बैन ही इस मज़मून पर चस्पा होती दिखाई दी। फरमाया है रिज से औसान पैदा होते हैं, गंदगी से बुत बनते हैं। और अमरे वाक़या ये है कि इस वक्त जो इत्तलाएं पाकिस्तान से मुझे मिली हैं उससे नहायत ही खौफनाक तस्वीर इस बात की उभरी है कि लोग गंदगी में मुब्तला होकर टेलीविजन के ज़राए को ऐसे नापाक इस्तेमाल में ले आए हैं कि जिसके नतीजों में घर घर में गंदगी दाखिल हो गई और घर घर में बुत दाखिल हो गए। इसके मुतालिक एक पाकिस्तानी रिसाले ने जो अदाद व शुमार शाया किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो लिखते हैं, इस वक्त सैटेलाइट पर मौजूद कमो बेश 136 चैनलों को मुख्तलिफ डिशों से देखा जाता है। पाकिस्तान में 136 चैनल से मुख्तलिफ डिशों को देखा जाता है, जिनमें सिर्फ इंडिया के 36 चैनल हैं। उसके अलावा अमेरिका के 17, बरतानिया के 9, फ्रांस के 5 और चीन के 17 चैनल शामिल हैं। एक हफ्ते में 7 चैनलों के जरिए, जिसका इन्होंने हिसाब किया, 99 भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। एक हफ्ते में 99 फिल्में दिखाई जाती हैं और भारतीय फिल्में जो दिखाई जाती हैं सरासर गंद से भरी हुई, ऊपर से नीचे तक ना सिर्फ गंदी बल्कि खोखली और रोज़मर्रा के मजाक को तबाह बर्बाद कर देने वाली, ना अदब का कुछ रहने देती हैं, ना शरीयत का कुछ बाकी रहने देती हैं, महज बेहूदा गंदगी। और फिर ऐसे तवाहमात में मुब्तला करने वाली हैं जिनका तौहीद के साथ दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उन तवाहमात के साथ तौहीद मिटने लगती है। यानी तौहीद जब वो तवाहमात दिल पे कब्जा करें तो ऐसा रिज्स है, ऐसी नापाकी आ जाती है जिसके साथ तौहीद फिर रह नहीं सकती कभी। तो तौहीद अपने डेरे उन दिनों से उठा लेती है। ये नज़र आज के खुतबे में मैं खुसूसन जमात अहमदिया को नसीहत करना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह सकता कि अहमदी इस गंदगी में बिल्कुल मुलव्वस नहीं, क्योंकि बाज़ इत्तलाएं मुझे मिलती हैं और उससे मेरे दिल को गहरी तकलीफ पहुँचती है। ना सिर्फ ये कि मुलव्वस हैं बहुत से घर, बल्कि बाज़ लोग रत जगह मनाते हैं इंडियन फिल्में देखने के लिए, कि एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी, उनके दिन और रात के औकात ही बदल गए हैं। और पाकिस्तान में तो कसरत से है, मगर अल्लाह ताला के फजल से अहमदियों में बहुत कम, मगर है ज़रूर, और खसूसियत से बड़े शहरों में है, कराची में है, लाहौर में है, और शायद पिंडी में भी हो या इस्लामाबाद में। मगर बिलअमूम जो खबरें मिलती हैं वो ये हैं कि बहुत भारी रुझान जमात अहमदिया का नए डिशों के ज़रिए हमारे एमटीए सैटेलाइट के नए प्रोग्राम देखने की तरफ है। और जो इतला मिल रही है वो ये है कि जब से 24 घंटे का प्रोग्राम शुरू हुआ है, और खसूसियत से जब से नए डिश के ज़रिए हमने, जो बहुत बड़ा डिश है, उसके ज़रिए प्रोग्राम को उठाया है, वहाँ पिक्चर की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, तस्वीर बिल्कुल साफ आने लगी है। बाज़ जगह लोग कह रहे हैं कि हमें तो मुकामी टेलीविज़न और इसमें कोई भी अब फ़र्क दिखाई नहीं देता, आवाज़ भी साफ है, तस्वीर भी साफ है। जब से ये हुआ है, जो लोग टेलीविज़न या सैटेलाइट का कारोबार करते हैं उनकी इतला ये है कि अचानक इतने ऑर्डर बढ़ गए हैं कि हमसे संभाले नहीं जा रहे। और अल्लाह ताला के फजल से जमात की अक्सरियत का किबला दुरुस्त ही है, लेकिन जिनका टेहरा है उन्होंने बहुत ही खतरनाक इकदाम किए हैं, उनको और उनकी नस्लों को ये बात बिल्कुल हलाक कर देगी। नामुमकिन है कि रूहानी तौर पर इस गंदगी के साथ जिंदा रह सके। वजह यह है कि जहां जहां ये बात बढ़ रही है, और बहुत बढ़ रही है, उनकी जो तस्वीरें मुख्तलिफ खतों के जरिए पहुंचती हैं वो ये शक्ल है कि बाद घर डिश एंटाना के जरिए दिन रात हिंदुस्तानी फिल्मों में मगन रहते हैं, उनकी औलादों की शक्लें बदल चुकी हैं, उनकी रोज़मर्रा की तर्ज कलाम में फ़र्क पड़ चुका है, उनके यहाँ हीरो का तस्वीर ही बदल गया है, और गंदगी, बेहयाई और बेगैरती ये नई नस्ल का तुर्रा इम्तियाज बनता जा रहा है। और ना इबादत की होश, ना किसी और आला मकसद की, यहाँ तक कि ये लोग अब आला दर्जे के लिटरेचर से भी बिल्कुल बेबहरा हो गए हैं। अमर वाक़या यह है कि हिंदुस्तानी फिल्मों में अदबी लिहाज से भी ऐसी मकरूह चीज़ें हैं और ज़ुबान का मैार इतना घिरा हुआ है कि जिस कौम को अपनी ज़ुबान और से प्यार हो और मोहब्बत हो, जिसको अपनी आला कदरों की हिफाजत का ख्याल हो, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उनकी नई नस्लें अपनी कल्चर, अपना अदब, अपनी शरीयत, अपना मजहब, अपनी रूहानी अखलाकी कदरें सारी की सारी हिंदुस्तानी फिल्मों की नज़र कर दें। ये जब गंदगी मजीद बढ़ती है तो आप हैरान होंगे ये देखकर कि इन घरों में हिंदू एक्टरों की, हिंदी एक्ट्रेसों की तस्वीरें वो बड़ी बड़ी चार्ट की सूरत में दिखाई देती हैं। बाद लड़कों और लड़कियों के कमरों में, लड़कों के कमरों में एक्ट्रेसों की तस्वीरें और लड़कियों के कमरों में एक्टरों की तस्वीरें, और बड़े फख्र से लगाते हैं, और माँ बाप देखते हैं और कहते हैं बड़े बड़े होशियार बच्चे हैं, कहाँ से तस्वीर हासिल की तुमने, खूब घर सजाया है। यानी ये भूल जाते हैं कि कुरान करीम की इस आयत ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था कि रिज्स जो है ये बुतों पर जरूर तब्दील होगा, ये बदबख्त बुत तुमने अपने घर में पाल लिए हैं। इन लोगों के किरदार को नज़दीक से देखो तो कोई शरीफ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इनके साथ आना जाना रखे, इनको अपने घरों में बुलाए, इनके घरों में जाए, इनकी दुनिया ही और है, सिर्फ मादा परस्ती है, सिर्फ बेहयाई को तरकीब देना है, सिर्फ बनावट है। सच्चाई तो करीब तक नहीं फट गई, और ये जो बनावट है ये झूठ, झूठ के सिवा कुछ नहीं। देखें कुरान करीम की आयात ने कितनी सफाई के साथ इस मज़मून के हर पहलू को खोल दिया था। फरमाया देखो फजतनबू रिज्स मिनल औथान है, तुम रिज्स से तो बच रहे हो, तुम्हें बैतुल्लाह ने यह तालीम दे दी कि रिज्स के साथ यहाँ नहीं आना, रिज्स को तर्क करो और हमेशा के लिए साफ करो अपने बदन से, अपनी रूह से, और याद रखो खास तौर पर बचो رشتہ میرے عفان ہے, ایسے رشتے جو لازمن بتوں کی طرف لے جائے گا. بت پرستی کے رشتے بچو, وش تنے بو قول زور, اور جھوٹ سے بچو. تو ہندوستانی فلموں کی پرستش کرنے کے نتیجے میں ان ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی پرستش شروع ہو چکی ہے جو خود اپنی ذات میں ایک جھوٹ کا ملمہ ہے, جھوٹ کا مجسمہ ہے. ایکٹنگ ہے ہی جھوٹ. ان کے بیانات آپ پڑھ لیں, ان کے متعلق اخباروں میں ان کے تبصرے پڑھ لیں, ساری زندگی جھوٹ ہے. ایک مصنوعی کھوکھا سا بنا ہوا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. اور ان کے متعلق باتیں اس فخر سے بعض لوگ اپنے اخباروں میں اچھالتے ہیں, پاکستان کے مسلمان اخبار, اور اس طرح ان کی تصویریں روزانہ شائع کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ کتنا زندگی میں تضاد پیدا ہو چکا ہے. اور یہ بت روزانہ اخبار بھی ان کو مہیا کرتے ہیں, وہ پھر کاٹ کوٹ کے بچے اپنے اپنے البوں میں سجاتے, اپنی دیواریں ان سے کالی کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ رجس ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے گھروں میں داخل ہو گیا ہے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جن کا وہ قبلہ بن چکا ہے, ان کی طبیعتوں پر گرا ہے یہ بات کہ ہم نے اپنا رخ بدل لیا ہے. کبھی کبھی وہ دونوں طرف قدم رکھ لیا کرتے تھے, اکثر گن دیکھ لیا, کبھی وہ اس طرف بھی نگاہ ڈال لیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے, کس حد تک ہمیں بور ہونے کی طاقت ہے. تو دم گھونٹ کر جس طرح انسان غوطے مار لیا کرتا ہے, ایسے گھروں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دم گھونٹ کر ٹیلی ویژن ایم ٹی اے بھی دیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنے گند کو صاف کرنے کا انتظام کر لیا کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ تو پھر اس نظام پر راضی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس جھوٹ پر, اس گند پر راضی ہوں اللہ اس کو بڑھا دیا کرتا ہے, یہ قانون قدرت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, وہ لوگ جن کے دل بیمار ہو گئے ہوں, خدا کی یہ تقدیر ہے کہ ان کے رجس پر اور رجس کا اضافہ کرتا ہے. پھر ان کے دل کی خبز, ان کے دل کی گندگی, ان کی دنیا پرستی پھر کم نہیں ہوا کرتی, وہ بڑھتی رہتی. اور یہی وہ صورت حال ہے جو نہایت بھیانک طریق پر پاکستان کے امیر خاندانوں کو مکمل اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں, شکنجے میں آئے ہوئے لوگ ہیں. اتنی خوفناک تہذیبی خودکشی کر چکا ہے پاکستان کہ ان کے پاس اس کا کوئی بس نہیں, کوئی اس کا توڑ نہیں ہے. اس لیے توڑ نہیں کہ اگر ایسی قوم جس کا ذوق بد ہو چکا ہو, جو کھلے عام گندگی کرے اور دعوتیں دے اپنے دوستوں اور حلقہ احباب کو کہ آؤ فلاں رات ہم ساری رات ٹیلی ویژن پر ہندوستانی فلمیں دیکھیں گے, آ جاؤ شامل ہو جاؤ, اس قوم کا باقی کیا رہے گا؟ ایک طرف مولویت ہے جو بفر رہی ہے اور زور مار رہی ہے. مولویت کا سارا زور اس بات پر ہے کہ صرف اس ایک ٹیلی ویژن کو بند کر دیا جو خدا اور خدا کے رسول کی طرف بلا رہی ہے. ایک طرف یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ اتنی چینل, 136 چینل گندگی کی طرف بلا رہے ہیں, اور اس ایک چینل کا ذکر سے بھی اس مولوی کی جس نے مضمون لکھا ہے طبیعت گھبراتی ہے. جو ایک ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہی ہے اور وہ ایم ٹی ہے, اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کہتے ہیں جب تک اس کو نہ مٹا دیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا. پاکستان ہوتا کون ہے اور خدا اور اس کے رسول کا ذکر سننے والا؟ غرق ہو جائیں بدبختیوں میں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. دن رات ہندو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی پرستش کریں, اور واقعتاً پرستش ہے, تصویریں لگا کر دیکھنا, ان میں مگن ہونا, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا, اور پرستش کو کہتے ہیں. پرستش کا نام ہے عبادت, اور عبادت کا لفظ غلامی سے تعلق رکھتا ہے. تم جس کو اپنا معبود بناؤ گے اس کی غلامی کرو گے, اس کے انداز سیکھو گے, ویسی شکلیں بناؤ گے. بس جب یہ شروع ہو جائے تو اس کا نام عبادت ہی ہے, کوئی اس میں مبالغہ آمیزی کا کوئی سوال نہیں. اور یہ عبادت جو وہاں ہو رہی ہے جھوٹ کی عبادت ہے, کیونکہ ایکٹنگ اور جھوٹ ایک ہی چیز کے دو نام. بس قرآن کریم کی اس آیت کا اطلاق ایسی وضاحت کے ساتھ پاکستان کے معاشرے کی خرابیوں کے ہر جز پر اطلاق پا رہا کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا جب تک یہ آیت نظر کے سامنے نہ آئی. اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کتنا واضح نقشہ اس بیماری کا کھینچا گیا ہے جس کے تعلق میں مجھے قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاش تھی تاکہ اس کے حوالے سے میں خود دے سکوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ حالت اگر احمدی گھروں میں بھی داخل ہو جائے اور چاہے ہزار میں سے ایک میں ہو گئی ہو, ہو چکی ہے بعض گھروں میں, تو ہماری اگلی نسلوں کو کیا بنے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دن بدن توجہ ایم ٹی اے کی طرف بڑھ رہی ہے اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ہے, جہاں جہاں یہ تصویر پہنچی ہے, اس نے دلوں کی پاکیزگی کا سامان شروع کر دیا ہے. سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے بچے تو اس شدت کے ساتھ اس سے وابستہ ہو چکے ہیں کہ جیسے انہیں ایڈکشن ہو گئی, اور ہر جگہ سے یہی اطلاع ملتی ہے. بعض جگہ بڑوں کو بچے مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں دیکھنا, ہمیں یہ دکھاؤ. یہ اللہ کی شان ہے, اس نے اپنے فضل سے اس ٹیلی ویژن کی محبت دلوں پر نازل فرما دی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ بتائیں کہ ہم جماعت کی تربیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے ملک میں, بلکہ اتنے وسیع علاقوں میں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے اور دیگر مشرقی ممالک شامل ہیں, جن سب پر یہ ہندوستان سے پیدا ہونے والی ٹیلی ویژن کی گندگی کا اثر پڑ چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ملیشیا میں جن کو اردو نہیں بھی آتی وہ بھی یہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں, انڈونیشیا میں جن کو اردو نہیں بھی آتی وہ بھی یہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں. وہاں ہم ان کو سنبھالنے کے لیے کر کیا سکتے تھے؟ کیسے ممکن تھا کہ ہم گھروں میں داخل ہو کر ان کے بچوں, ان کی بچیوں پر اثر انداز ہوتے اور ان کو اس غلاظت سے بچانے کی کوئی کوشش کر سکتے؟ اول تو ایسے لوگ پھر نمازوں سے بھی تعلق توڑ بیٹھتے ہیں. کبھی جمعے پر جو واسطے ہو جا رابطے ان کے ہو جایا کرتے تھے, اس کی بھی توفیق نہیں ملتی, اور رفتہ رفتہ دین سے چرک کر اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پھر ان تک آواز پہنچنا ہی ممکن نہیں رہتا. کیسے ان تک آواز پہنچائیں کہ واپس آ جاؤ؟ بس ایم ٹی اے ایک بہت ہی بڑا احسان ہے, اتنا احسان ہے کہ ناممکن ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے حضور سارے عالم میں جو جماعت نے ہم پر ذمہ داری کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی اور وہ بڑھ رہی ہے. تبلیغ کے تقاضوں کے بڑھنے کے ساتھ یہ ضرورت اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہم کیسے ادا کر سکتے؟ ناممکن تھا. اور لاکھوں بنا کر ان کو پھر اندھیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, یہ کون سی حکمت کی بات تھی؟ اب اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں یہ استطاعت ہے کہ مسلسل 24 گھنٹے تمام دنیا احمدیت میں ہر جگہ اللہ اور اس کی رسول کی باتیں پہنچائے گا یہ نظام, اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اس نور سے خالی ہو. بس جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے, مگر میں پاکستان کی جماعتوں کو خصوصیت سے متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ جائزے لیں کہ کہاں کہاں یہ گندگی ہے اور ان کو سمجھا کر منتیں کر کے ان کو بچانے کی کوشش کریں. بعض معین گھروں کے متعلق مجھے علم ہوا ہے کہ رات 2-3 بجے تک جاگنا ان کا دستور بن چکا ہے, کیونکہ وہ ایک فلم کے بعد دوسری گندی فلم نہ دیکھنے کی زحمت برداشت نہیں کر سکتے. اس گند کے بعد اگلا کیا گند ہے, اس کے بعد پھر اور کیا گند آئے گا, یہاں تک کہ جب بدن ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت ان کو نیند آتی ہے جبکہ خدا کے بندوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے. تہجد کا تو سوال ہی کوئی نہیں, صبح کی نماز بھی ضرور جاتی ہے, اور ایسے لوگوں کو رفتہ رفتہ ذوق عبادت رہتا ہی کوئی نہیں, کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں رجس ہو جائے وہاں پھر ضرور بت قبضہ کیا کرتے ہیں. ناممکن ہے کہ توحید وہاں بیٹھی رہے, जिसकी तुम बेहरमती करोगे वो फिर तुम्हारे पास नहीं रहेगी। बस एक ही जरिया है कि एमटीए की तरफ इनको वापस लाया जाए, और अब अल्लाह का फजल ऐसा है कि इसका रुख इतना बदल गया है उन गंदे प्रोग्रामों से कि उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि हर रोज बार बार इसका रुख तब्दील करें। बस ये अल्लाह का एहसान है, और जो जो वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम और बेहतर भी होंगे और मुतनव्वे भी होते चले जाएंगे। अभी इब्तदाई दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनका समझना ही बहुत पुरफेज काम है, और उसके लिए वॉलंटियर्स का दिन रात उस पर निगरान रहना और बर वक्त सही कल को दबाना और गलत कल को रोक देना, ये भी हैरत होती है देखकर इन नौजवानों को। जब मैं स्टूडियो में देखता हूँ कि किस तरह इनकी उंगलियाँ ठीक चली जाती हैं, तो लगता है एक बड़ा झंझट है, जैसे कोई बहुत ही जदीद किस्म का हवाई जहाज उड़ा रहा हो पायलट, उसको जिस तरह बड़े वसी इल्म की जरूरत है, वरना उसका हाथ सही नॉब की तरफ जा ही नहीं सकता। इसी तरह ये निज़ाम भी बहुत ही पेचीदा निज़ाम है, इसका तवाज़ुन कायम रखना, इसकी और बहुत सी ऐसी ज़रूरियात हैं जिनको गिना नहीं जा सकता आम मजलिस में, क्योंकि वो टेक्निकल तफासिल हैं कि उनको समझे बगैर, उन पर अबूर हासिल किए बगैर हम इसको, इस निज़ाम को पूरी तरह बरमहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मैंने बयान किया है, वक्तन जो जो वक्त आगे बढ़ेगा हमारे वॉलंटियर्स और तैयार होते चले जाएंगे, और खुदा के फजल से आर्जी रोकें जो हैं दूर हो जाएंगे। अब आखिरी पहलू, आखिरी अमर जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ, वो ये है कि दिलचस्पी का इंसानी फितरत से एक ऐसा गहरा रब्ता है कि महज ये कहकर कि गंदगी से बचो, आप उनके रुख दिल पाकिजगी की तरफ फेर नहीं सकते। तहवीले क़िबला के वक्त जो रुख बदले हैं वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की वजह से बदले हैं, वरना पुरानी रस्मों को इंसान अचानक छोड़ नहीं सकता। वो मोहब्बत इतनी कवी थी कि जैसे ताकतवर मिकनातीस कम ताकतवर मिकनातीस से उस सुई का मुंह छीन लेता है जो किसी कम ताकतवर मिकनातीस की तरफ मुड़ी हुई है। इस बीमारी का खुलासा यह है कि बाद लोगों के दिलों में दुनिया की गंदगी का मिकनातीस ज्यादा ताकतवर है, और वो लोग जो पाक हैं उनके दिल में तो हमेशा ही एक ही मिकनातीस है, दूसरा है ही कोई नहीं, उनका किबला तो हमेशा दुरुस्त रहेगा। जो बीच के लोग हैं उनके लिए हमारा भी फर्ज है कि अपने मिकनातीस की ताकत को इस तरह बढ़ाएं कि कुछ उनकी दिलचस्पियां भी इसमें शामिल हो जाएं, कुछ तो ऐसे सामान हों कि जिसके नतीजे में वो देखें तो फिर नजरें टिकी रह जाएं, और रफ्ता रफ्ता उनके ज़ौक दुरुस्त होने लगे और रफ्ता रफ्ता उनको हमारे प्रोग्रामों से मोहब्बत होने लगे। इस सिलसिले में मैंने दुनिया भर की जमातों से अपील की थी कि सिर्फ तकरीरों के प्रोग्राम हमें नहीं चाहिए, दिलचस्प प्रोग्राम बना के भेजें, मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ ऐसी जुग्राफियाई या निबाताती या तमदनी या मादनियाती या जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली ऐसी खसूसियात हैं जिनमें फी जाते ही इंसान को दिलचस्पी होती है, उनको इस तरह पेश करना कि एक इंसान खा उसको नेकी से मोहब्बत हो भी या ना हो, वो उस चीज़ को देखे तो इंसान की आलमी तवज्जो की दिलचस्पी होती है इन बातों में, उस जरिए से वो उसके साथ वाबस्ता हो जाए, उसके साथ उसका दिल लग जाए। ये हमारा फ़र्ज़ है। बीच बीच में जो खालिस नेकी के प्रोग्राम आएंगे उनसे भी फिर इनको इनकी मोहब्बत बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि ज़ौक पैदा हो जाएगा। पहले ज़ौक को दुरुस्त करना, फिर उसको बढ़ाना, उसकी तरबियत करना, ये बहुत ही वसी काम है जो महज मशीनों से नहीं हो सकता, महज 24 घंटे के कैलोरियन से नहीं हो सकता, उसके लिए ज़हीन और फिदाई दिमागों की ज़रूरत है। वो तजुर्बे करें और हर मुल्क में बाकायदा निगरानी में ऐसे प्रोग्राम बने जो कसरत के साथ अपने मुल्क के ऐसे हालात को नुमाया तौर पर पेश कर सकें जिसमें गैरों को दिलचस्पी हो। सिर्फ एमजीओ को नहीं, इंसान को बहसीत इंसान दिलचस्पी हो। अब अफ्रीका है, हम समझते हैं अफ्रीका एक अंधेरी जगह है, हालांकि अफ्रीका के अंदर बड़े नूर हैं, बहुत ही खुदा तला के फजल से अजीम खूबियां हैं उस मुल्क में रहने वालों की। उनके इलाकों को खुदा तला ने बड़ी बड़ी नियमतों से नवाजा है, उनके हालात, फिर उनकी सबका रस्म व रिवाज का बयान करना, फिर किस तरह उन पर ईसाइत ने कब्जे किए, किस तरह अल्लाह तला ने अहमदियत को उनको इस जंगल से और फिर शिरक के जंगल से निजात देने की तौफीक बख्शी, और इस ताल्लुक में खुदा तआला की तरफ से जो एजाज जाहिर होते रहे हैं, इनका बयान एक ऐसा बयान है जो दहरिये के लिए भी बिलाखिर दिलचस्पी का मुझे बन जाता है। कई मुझे ऐसे खत मिले हैं जिससे पता चलता है कि एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल दहरिया और बेताल्लुक था, उसने जमात अहमदिया के एमटीए के प्रोग्राम देखे तो महज इस वजह से उसको दिलचस्पी पैदा हुई, उसको नजर आया कि खुदा इनके साथ है और उसकी जिंदगी की क्या पलट गई। जो दहरिया था वो न सिर्फ बाखुदा हुआ बल्कि उसने पहचान लिया कि यही वो जगह है जहां खुदा मिलेगा। बस बाखुदा लोगों के तजारब भी तो दुनिया के सामने पेश करने हैं और हर मुल्क से पेश होने चाहिए। हर जगह खुदा के फजल ऐसे नाजिल हो रहे हैं जहां ये तजारब बड़ी कुव्वत के साथ लोगों को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि सच है। पर सच्चाई की ताकत है जो तौहीद की ताईद के लिए आपके काम आएगी। झूठ और मकर की ताकत है जो मुशरिकीन के काम आ रही है। अब यह टक्कर है, इस चैलेंज को हमने कबूल किया है और करेंगे और तौहीद की खिदमत के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। हम उन बुजदिलों में से नहीं हैं जो ये देख करके दुश्मन बड़ी ताकत वाला है, बड़ा ताकत वाला है, फीस दिखा सकें। हम तो तौहीद के लिए सीना सिपर होकर आखिरी दम तक कोशिश करने वाले लोग हैं, कभी दुनिया हमें पीठ दिखाते हुए नहीं देखेगी। बस उसके वो तरीके इख्तियार करें जो खुदा की खुदा ताला ने हमें सिखाए हैं पुरानी करीम में, और इसी आयत के अंदर ये मजमून है कि तुम अगर सच्चाई से चमक जाओगे तो ये तौहीद का निशान है और ये शिर्क को इजाजत नहीं देगी कि तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाए। अब ये सच्चाई का मजमून भी बहुत फैला पड़ा है। वो लोग जो गंदगी इख्तियार करने वाले हैं, आप उनके मुआशरे में जाकर देखें, उनकी बातें सुने, अक्सर झूठ के आदि होते हैं। उनके बच्चे, उनके बड़े बात बात में झूठ बोलते हैं और उससे लुत्फ उठाते हैं। उनकी मजालिस में अक्सर झूठ की बकवास को मजाक समझा जाता है और कोई आ ही नहीं रहती झूठ से। तो वो जो कलाम का झूठ है वो उनकी जिंदगी का झूठ बन जाता है, वो जहर उनकी रगोपे में सरायत कर जाता है। वो मनहूस तस्वीरें उभरती हैं जो दुनिया के ऐसे हीरोज की, ऐसे अदाकारों की परस्तिश करने लगती हैं जिनको दुनिया अदाकारी में भी कोई मकाम हासिल नहीं, जिनके स्क्रिप्ट लिखने वाले बेअदब लोग हैं, अदब से आज और बेअदब भी। उस शरीयत के नाम पर शरीयत का सत्यानाश कर देते हैं। ऐसा भोंडा मजाक है कि कोई शरीफ इंसान जिसमें जरा भी जौक की कदर हो वो थोड़ी देर भी देख नहीं सकता ये प्रोग्राम, लेकिन मजाक बिगाड़ दिए गए हैं। एक बात याद रखें कि हमने अपनी सच्चाई, अपनी अपने माशरे और अपनी तहजीब को और तमाम दुनिया की जमातों को झूठ से पाक करना है और झूठ से पाक करने की मुहिम जारी होनी चाहिए। और अगर तबीयत में सच्चाई पैदा हो जाए तो सारी दूसरी बदियों का इजाला कर देती है। तो एक तरीक तो यह है कि उस रिज से इनको छुड़ाएं जो लाजमन झूठ पर मुंतज होगा और बुत परस्ती के जरिए दाखिल होगा, जैसा कि खुदा तआला फरमाता है फजत नबू रिश्ता मिनल औफान वजत नबू कौल दूर। ऐसे रिश्ते पना मांगो, दूर हटो, जो जरूर बुतों तक पहुंचा देगा। और याद रखो कौल जरूर, सबसे खतरनाक बुत झूठी बात है, झूठ का कौल है, झूठ की इबादत है। तो बाज दफा एक सिरे से मुहिम चलाई जाती है, बाज दफा दूसरे सिरे से चलाई जाती है। अब वक्त है कि हर सिम से मुहिम चलाई जाए, मन्नतें करके जिस तरह भी हो समझाकर इन लोगों को इस गंदगी से निकालने की कोशिश करें, और इनको समझाएं कि इन लगवियात से मुंह मोड़ो और अपना किबला सीधा करो। खुदा तआला ने तुम्हारे लिए एक अजीम शान जिंदगी बख्श निजाम जारी फरमा दिया है, उसमें अगरचे वैसे गंदे प्रोग्राम तो नहीं जो हर इंसान को फौरन वैसे ही खींच लें उसकी नफसानी लज्जात की वजह से, मगर ऐसे पाकीजा प्रोग्राम हैं जो जौक को बुलंद करेंगे और ऐसा लुत्फ देंगे जो बाकी रहने वाला है, उसके बाद कोई सरदर्दी और कोई नफ्स की मलामत नहीं होती। वरना ये लोग जिस गंदगी से लुत्फ उठाते हैं सारी रात के बाद वो सारा दिन की सरदर्दी बना रहते हैं। अच्छे कामों से मारूम, सही मुतालिया से मारूम, अपनी जिंदगी के आला मकाद से दूर हटते हुए और लुत्फ उठाते हुए ऐसी बेचैनी दिल में महसूस करते हैं कि दिल चाहता है ये सारी जिंदगी हम अपने अंदर दाखिल कर लें, इससे चिमट जाएं, और वो चीजें जो दूर से अच्छी दिखाई देती हैं हमारे करीब आ जाएं। तो हसरतें पैदा होती हैं जिनको पूरा कर ही नहीं सकते। वो एक्टर और एक्ट्रेसें जो इनकी जिंदगी का मरकज बन गए हैं, उनकी तादाद अगर उनके हवाली हाशी मवाशी सारे इकट्ठे कर दो तो ज्यादा से ज्यादा 20-40-30 हजार होगी, 1 लाख भी बना लो तो उनके पहले दावेदार तो हिंदुस्तान के 1 अरब बशिंदे हैं या 1 अरब के लगभग। वो 1 लाख 1 अरब में कैसे तकसीम होंगे और कितने बचेंगे कि पाकिस्तान के 10-12 करोड़ के हाथ आए, और हो कैसे सकता है कि उनसे वो अपनी नफसानी लज्जत भूख की तस्कीन कर सके। इसी का नाम शराब है, जिसको कुरान करीम ने दूसरी जगह यूं बयान फरमाया कि बेवकूफ अंधे दिन की रोशनी में अंधेरों की पैरवी कर रहे हैं, ऐसी चीजों की पैरवी कर रहे हैं जो हाथ आ ही नहीं सकती। प्यास को बढ़ाती हैं मगर प्यास बुझाने का कि उनमें सलाहियत ही नहीं है। सलाहियत इसलिए नहीं कि वो थोड़े लोग हैं और हर इंसान की पहुंच से बहुत दूर है, और अगर 10-12 की पहुंच में हों भी तो उनके लिए नामुमकिन है कि 10-12 की तस्कीन भी पूरी कर सकें। अपनी नहीं होती उनकी, खुदकुशियां कर लेते हैं अपनी उम्रों के बाद, क्योंकि जितने परस्तार वो भी झूठे निकलते हैं। और उनके जो कन्फेशंस हैं वो आप पढ़ें, जो इंग्लिस्तान और यूरोप के एक्ट्रेस से ताल्लुक रखने वाले हमें मुस्तनद मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी ऐसी माबूदाएं जो झूठी माबूदाएं थी उनका अंजाम ये हुआ कि खुदकुशी करके मर गई। बड़े बड़े एक्टर खुदकुशी करके मर गए कि तुम हमें दूर से देखकर प्रस्तुति कर रहे थे, अंदर देखो तो सही कि आग के सवा है ही कुछ नहीं। बस इन बुतों की प्रस्तुति करके तुम्हें मिलेगा क्या? सारी रात इबादत करोगे, सारा दिन उसकी बदमजगी में मुबतला रहोगे, दिल में उमंगें भड़क उठेंगी, इसको भी हासिल कर लो उसको भी हासिल कर लो, ना ये हासिल होगा ना वो हासिल होगा। सिर्फ तस्वीरों की परस्तिश कर सकते हो, उसको सीने से लगा सकते हो, उसको चिमट सकते हो, उससे प्यार कर सकते हो, उसको खूबसूरत फ्रेमों में बना जकड़ सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे कुछ हाथ नहीं आ सकता। मगर क्या तस्वीर भी कभी दिल बहला सकती है? मुतहरक तस्वीर भी नहीं बहला सकती, खड़ी तस्वीर भी नहीं बहला सकती। हाँ, तस्वीर से वाबस्ता मजामीन बाज दफा तस्कीन बख्शते हैं, और इन तस्वीरों से वाबस्ता तो कोई मजमून भी ऐसा नहीं जो दिल की तस्कीन का मुझे बन सकता। सिर्फ आग भड़काने वाले मजामीन हैं, और हर शख्स जानता है जिसको यह तजुर्बा होगा वो जानता होगा कि मैं झूठ की प्रस्तुति कर रहा हूं। एक भड़की लगी रहती है जो बुझती नहीं, समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। जितना आगे बढ़ते हैं प्यास बढ़ती चली जाती है। इस समंदर के पानी पीकर प्यास बुझाने वाले जाहिल सवाय इसके कि हलाकतों की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका कोई मकसद नहीं। तो मुआशरे को निगरान हो जाना चाहिए, अहमदी निजाम को हर जगह मुस्तैद हो जाना चाहिए, जहां जहां ये बीमारियां दाखिल हो रही हैं उनका दायरा कर लें, क्योंकि वो फाशा की बीमारियां हैं जो फैलने वाली हैं। ऐसी बीमारियां हैं जो आगे लगेंगी और फिर सारे मुआशरे को बेकार कर देंगी, इसलिए इनके गिर्द घेरे डाल लें ताकि इनका दंड आगे दूसरे पाक घरों में मुंतकिल न हो सके। बायकॉट उस तरह ना सही, मगर जो जाने वाले उनको समझाएं तो सही, जब भी वो ऐसा गंद देखें उठकर आ जाए वहां से, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये करना है तो फिर हमारा आना जाना तुम्हारे घर में मुनकते हो जाएगा। जो भी जरिए इख्तियार करें, नीचे से ऊपर की तरफ सफर करें, यानी रिज्स को पाक करते, आखिरी मकाम यानी झूठ के कला कमा करने के जरिए से सफर इख्तियार करें और मुआशरे से झूठ की बीखकनी के प्रोग्राम बनाएं। किसी बच्चे का झूठ बर्दाश्त न करें, चाहे वो मजाक में हो। ये वो एक सूरत है जिसके नतीजे में ये जो बहुत बड़ी और भयानक जंग हमारे सामने है, माशरती खबासतों से अपने खानदानों को और अगली नस्लों को पाक और महफूज रखना, ये नसीब होगी तो फिर खुदा तआला के फजल से एमटीए का फैज भी आम होना शुरू हो जाएगा। जब ज़ौक दुरुस्त होंगे तो फिर इस मजमून में भी लोगों को दिलचस्पी होगी जो एमटीए का मजमून है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें और मालूमात जो हक पर मबनी हैं और मसरूई नहीं है, जो सरतापा सच है। ऐसा एक निज़ाम टेलीविजन का जिसमें अदाकारी का कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है, यहां तक कि जब एक अरब औरत ने एक तो खबर पढ़ने वाले को इस तरह देखा कि उसने एक पांव मोटर पर ऊपर रखा हुआ था, एक बाहर था, तो मुझे एहतजाज का खत लिखा। अभी वो एमडी नहीं हुई थी, अब खुदा के फजल से मुखलिस एमडी बन चुकी है। उसने कहा मुझे तो आपके प्रोग्राम से मोहब्बत इसलिए थी कि मैं सच है इसमें कोई भी अदाकार नहीं। जो आप खाना खा रहे होते हैं, जब बैठे हुए बच्चों में बातें करते हैं, मजाल है जो कोई मुस्लिम बात भी आपके चेहरे मोरे आपकी जुबान पर और उन बच्चों के चेहरे मोरे और जुबान पर हो जो आपके इर्द-गिर्द बैठे होते हैं। फिर मैं तो फैसिनेट हो जाती हूँ इन बातों से, शुक्र है खुदा का कि एक टेलीविजन तो ऐसा है जो सच पर मबनी है। यदि जब मैंने उस खबरें पढ़ने वाले को देखा कि वो मसनू अदाकारों की नकल कर रहा है और अपनी तरफ से खबरों का मैार बढ़ा रहा है, तो उसी वक्त मेरे दिल बेकरार हो गया। मैंने कहा अभी आपको लिखती हूँ कि खबरों का मैार बढ़ा नहीं रहा, गिरा रहा है। आपकी खबरों का मैार तो सच्चाई से ऊंचा होता है। आपकी टेलीविजन का तो लुत्फ ही ये है कि इसमें कोई अदाकारी का दखल नहीं, पर जो जो आप सच की खिदमत करेंगे, सच का ज़ौक बढ़ाएंगे, एमटीओ को अल्लाह ताला नई वसतें अता फरमाएगा, नए उफक अता फरमाएगा, और जो जो एमटीए के साथ लोगों का ताल्लुक बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला वो इस्लाम की कदरों के दायरे में आ जाएंगे और फिर उनको बाहर निकलने का वहम भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये वो दायरा है जो दिन ब दिन उनको बड़ी कुव्वत के साथ खुदा वाहिद और मोहम्मद रसूल की तरफ खींच लेगा। अल्लाह करे कि हमें इन तकाजों को पूरा करने की तौफीक अता हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.